आज के श्री नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर आप लोग बड़े पैमाने पर आज एकत्रित हुए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना मैं कृतज्ञता अर्पण करता हूं, खास करके जो लोगों ने अभिषेक किया और जिन लोगों ने अभिषेक देखा। भगवान की सेवा परिपूर्ण होने के कारण जो देखता है उसको भी उतना ही लाभ है जो करता है। शायद देखने वाले को ज्यादा लाभ मिलता है, ज्यादा आनंद भी मिलता है। यह हमारा सिद्धांत है। सेवा के रूप में हम अपना प्रेम अर्पण करते हैं, अपनी कृतज्ञता श्री नित्यानंद प्रभु को अर्पण करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु कौन है, आज का दिन का महत्व क्या है और उनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु कौन है। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई चपयोभिषाई शेषश्च यस्याम शकलासनित्या नंदाख्य रामम शरणम ममास्तु। मैं उन नित्यानंद को, अरे मैं उन नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं जो कृष्ण से अभिन्न है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सचिसुतो होइलो से बलराम होइलो निताय। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उनके बड़े भाई बलराम गोलोक वृंदावन में जो उनकी सेवा करते हैं वो बलराम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। नित्यानंद प्रभु एक रूप से महाप्रभु से अभिन्न है। उनकी शक्ति में, रूप में, सब चीजों में अभिन्न है पर भाव में भिन्न है। श्री गौरांग महाप्रभु सेवित भगवान है, सेव्य भगवान। सेव्य भगवान मतलब सेवा ग्रहण करने वाले, और श्री नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान। भगवान खुद अवतरित होकर दिखाते हैं कि किस तरह भगवान की सेवा की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में जब सृष्टि करना चाहते हैं, उससे पहले आध्यात्मिक संसार में भगवान का पहला विस्तृत रूप है बलराम जी, और बलराम जी से चतुर्व्यूह संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध चार आते हैं, और उस संकर्षण से फिर दूसरे महासंकर्षण एक आते हैं, उनके बाद दूसरे चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध वासुदेव प्रद्युम्न, और ये जो संकर्षण है ये पूरे आध्यात्मिक संसार निर्माण करने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक जगत जो है अनंत कोटि वैकुंठ, पूरी सृष्टि के तीन चौथाई हिस्सा ये संकर्षण विस्तृत रूप में प्रकट होते हैं। सारे वैकुंठ धाम जो है बलराम जी के स्वरूप है, विस्तृत रूप है। सेवा के लिए, और उनसे फिर भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए तीन विष्णु के रूप में भगवान शंकरशन विस्तृत होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु सबसे पहले कारण समुद्र में लेटते हैं और वो जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके एक एक रोम में से निकलते हैं, एक एक रोम में से। यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन तिलोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आप सोचो उनका स्वरूप कितना बड़ा होगा, उनके रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। इस ब्रह्मांड का आदि अंत हमें नहीं मालूम, ये उनके एक एक रोम से ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो वो महाविष्णु हुए और वो हरेक ब्रह्मांड में फिर से विष्णु प्रवेश करते हैं, वो है गर्भ उदक शाही ब्रह्म अंड। क्यों ब्रह्मांड बोलते हैं, एक अंडे के स्वरूप में होता है वो गोलाकार, और उसमें विष्णु प्रवेश करते हैं और लेट जाते हैं और आधा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है और उस पर लेटते हैं विष्णु। आपने देखा होगा विष्णु का चित्र, शेष शैया पर ऐसा सांप के शैया पर लेटे हुए हैं। आप श्रीरंगम जाएंगे या दक्षिण भारत में जाएंगे तो बड़े बड़े मंदिर हैं विष्णु के, शेष शाही विष्णु। श्रीरंगम में तो बहुत सुंदर है, फिर पद्मनाभ जी का मंदिर है केरला में बहुत है, वहां लेटे हुए हैं और उनके नाभि से एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनको सृष्टि करने का ज्ञान जो है विष्णु देते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। और फिर जब पूरे सृष्टि 84 लाख योनियों का निर्माण हो जाता है, हरेक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में तीसरे विष्णु प्रवेश करते हैं, वो है क्षीरोदक्षाय। मतलब अगर बलराम जी या नित्यानंद प्रभु, ये सबके सृष्टिया स्रोत जो हैं विष्णु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, पूर्ण रूप से धारण कर रहे हैं सब, तो ये नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है। और दूसरा, सेवा करने में भगवान की शैया बलराम जी बनते, नित्यानंद प्रभु बनते हैं। भगवान लेटते हैं ना शेष शैया, शेष नाग नित्यानंद प्रभु या बलराम जी हैं। भगवान जो वस्त्र पहनते हैं, धोती पहनते हैं, उतरिया पहनते हैं, सारे आभूषण पहनते हैं, जिस वाहन पर बैठते हैं, जो आसन पर बैठते हैं, जो उनका पादुका है, जो कुछ भी वो धारण करते हैं, ये सब नित्यानंद प्रभु के ही स्वरूप हैं। इस तरीके से श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे तरह से सेवा करते हैं। ये हुआ उनका परिचय, ये नित्यानंद प्रभु कौन है। अब दूसरा, वो क्या किस प्रकार से सेवा करते हैं, हमने चर्चा किया। तो आज का ये शुभ दिवस है श्री नित्यानंद त्रयोदशी, माघ शुक्ल त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष के, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी जो है, उस दिन कलयुग में आज से करीबन 500 साल पहले 1874 12 साल पहले 1474 86 में महाप्रभु का जन्म हुआ, 12 साल पहले एक चक्र नाम का गांव है बंगाल में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जिले में, वहां उनका जन्म हुआ। माता का नाम था पद्मावती, पिता का नाम हड़ाई पंडित, जो शाश्वत गोलोक वृंदावन में नित्यानंद प्रभु के माता पिता हैं, शुद्ध एक शुद्ध भक्त ब्राह्मण, ऐसे परिवार में श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। छोटी उम्र से वो हमेशा जब बच्चों के साथ खेलते थे तो एक ही खेल होता था उनका, कृष्ण लीला या राम लीला या नरसिंह लीला या वामन लीला, केवल भगवान के अवतार के सुंदर सुंदर कार्य। कभी कभी वो सारे बच्चों को एकत्रित करके कुछ ड्रामा करते थे, ऐसे बोले तुम वसुदेव बनो, तुम देवकी, और ये कंस का ग्रह है और ये यमुना है। तो कोई लड़का वसुदेव बनता था, टोकरी लेके आता था, उसके बाद कृष्ण का जन्म टोकरी में रखना और यमुना को पार करना, छोटी सी वो नदी होती थी उसको पार करना। उसके बाद जब अक्रूर का प्रसंग आया तो नित्यानंद प्रभु अक्रूर और कृष्ण बलराम को जब ले जाते हैं तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु गोपी बने और बहुत रोए, वो इतना बिलक बिलक कर रोने लगे कि उनको रोक नहीं पाया कोई, पूर्ण रूप से मग्न हो जाते थे। और कभी पूतना का वध, कभी शकटासुर, कभी बकासुर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर सब वही थे, सब बच्चों को एकत्र करके बोलते थे ये करना ये करना वो करना वो करना। और वो जब कोई भी रोल में घुसते थे पूर्ण रूप से उसमें चले जाते थे, मग्न हो जाते थे। एक बार उन्होंने रामलीला और वो है लक्ष्मण, तो उन्होंने कहा मैं लक्ष्मण का रोल करूंगा। तो फिर राम और रावण का युद्ध हो सब बता के रखे थे, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, तो राम का पार्टी उधर रावण की पार्टी इधर, और रावण को बोल के रखा था इतना युद्ध होने के बाद ये समय पे तू एक अस्त्र लेना और वो अस्त्र तू फेंकना, शक्तिशिला नाम का एक अस्त्र है, उस अस्त्र को लक्ष्मण जी के ऊपर फेंकना। तो बच्चा बोला ठीक है, तो उसने एक फूल का डंडी ले लिया ऐसा, और युद्ध हो रहा था उसने कहा लक्ष्मण अभी मैं तुझे मार डालता हूं, ये शक्तिशिला को फेंक रहा हूं, और वो फूल का जो डंडी था वो आके नित्यानंद प्रभु के ऊपर गिरा और लक्ष्मण जी के समान वो बेहोश हो गए। पर बेहोश होने के बाद देखे कि सांस ही नहीं ले रहे, वो तो सब बच्चे डर गए, भाग भाग के बोले अरे बुला, उनके माता पिता को बोला क्या हो गया इनको, उठ ही नहीं रहा ये बच्चा। सब बच्चे आ गए, सब गांव वाले लोग आ गए, नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते थे वो, सब आ गए वहां, बोले क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर एक ब्राह्मण आया, उसको उन्होंने पूछा बोले क्या क्या करेंगे अभी, उसको बोले कैसे हो गया ये, कैसे ये बेहोश हो गया। तो बच्चों ने बताया ऐसा ऐसा हमारा नाटक किया था, ऐसा था तो बेहोश हो गया। अरे बेहोश हो गया तो लक्ष्मण जब बेहोश हो गए तो हनुमान जी गए थे और संजीवनी लाए तब सुंघाया उसको। तो बच्चे ने बोला अरे अरे हाँ, हम लोग को बोला था कि जब मैं बेहोश हो जाऊंगा, एक लड़के को हनुमान बनाया था, बोले तू जाना और हिमालय से वो संजीवनी बूटी ले आना, तो भाग भाग के गया। उस समय उसको याद आया, बेचारा बेहोश होके देखे वो भी होश खो गया था, सब भूल गया था, भाग के गया। फिर संजीव पहाड़ उठा के छोटा सा कुछ टोकरी में उठा के ले आए, वो पहाड़ बना के, वहां एक मगरमच्छ उस पर आक्रमण किया, वो भी स्क्रिप्ट में था, तो मगरमच्छ जैसा लड़का उसने भी आक्रमण किया, हनुमान जी ने उसको मारा। फिर और एक राक्षस आया उसको भी मारा, मारने के बाद वो लाया उठा के पर्वत, तो और एक लड़का था सुषेण डॉक्टर सारे वानरों का, तो वो लिया और उसमें से फूल को फिर सुंघाया उसने, बोले संजीवनी सुंघा रहा हूं मैं, और सब हरिनाम करने लगे। और जैसे हरिनाम हुआ नित्यानंद प्रभु छलांग मार कर उठ गए और कीर्तन शुरू करने लगे। सब लोग पूछते थे उसको, छोटा सा बालक 5-6 साल के बच्चे, कभी वामन लीला कभी नरसिंह लीला, और पूरा स्क्रिप्ट एक एक डायलॉग सबका बोल देते थे। तो लोगों ने पूछा नित्यानंद से कि तुम्हें ये सब इतनी सारी लीला, कभी तुमने स्कूल नहीं गए, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, इतना सब कैसे मालूम तुमको? क्योंकि ये मेरी लीला है। क्या योग माया में ढके हुए कारण किसी को समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया। जब नित्यानंद प्रभु 12 साल के हुए तो एक दिन एकाएक उन्होंने ऐसा हुंकार किया कि पूरा एक चक्र हिलने लगा और बाद में चुप हो गए। कारण यह था कि नित्यानंद प्रभु को पता चला कि मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए हैं। अब वो बोले मुझे जाना पड़ेगा महाप्रभु, पर कैसे छोड़े? हड़ाई पंडित उनके पिता और पद्मावती उनकी माता इतना प्रेम, आपको मालूम है मां बाप बच्चों से कितना, छोटे बच्चों से कितना प्रेम कर सकते, थोड़े समय के लिए भी बच्चा नहीं रहा तो कुठे गेला, कुठे गेला, उसको करोड़ गुना बढ़ाइए उतना प्रेम पद्मावती का और हड़ाई पंडित का था। एक क्षण के लिए भी अगर नित्यानंद नहीं दिखा तो पानी के बिना मछली जैसे तड़पती है वैसा तड़प जाते थे। एक क्षण के लिए भी नित्यानंद के बिना नहीं रह सकते थे। बाजार में जाते तो साथ में ले जाते, लाना, घर में भी रहना, साथ में रहना। तो बोले इतने आसक्त है माता पिता, मैं कैसे छोड़ के जाऊं? फिर बहुत लंबी कथा है, उन्होंने एक ऐसा लीला रचा कि एक अनजाना सन्यासी, आज तक किसी को नहीं मालूम कौन था वो सन्यासी, एक सन्यासी एक चक्र में आया, हड़ाई पंडित के यहां ठहरा। हड़ाई पंडित बड़े अच्छे शुद्ध भक्त थे, उन्होंने अच्छी तरह से सेवा की सन्यासी की। पूरे रात कृष्ण कथा हो रही थी। सुबह जाते वक्त उन्होंने कहा कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, मैं पूरा भ्रमण करता हूं सब दिशाओं में, मुझे एक बालक चाहिए जो मुझे मदद करे, आपका नित्यानंद मुझे, मैं ले जाना चाहता हूं। जिस प्रकार विश्वामित्र के रामचंद्र को ले जाने का बात कहने पर महाराज दशरथ को दुख हुआ था, इस तरह से हड़ाई पंडित भी बहुत ही विचलित हो गए। पर क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया, अपनी पत्नी से पूछे, पद्मावती ने कहा जैसे आपकी इच्छा, और तब वो नित्यानंद प्रभु को लेकर चले गए सन्यासी। बाद में सब लोग एकत्रित हुए, कहां गया, कहां है निताय, अरे हम अपने बच्चों को, हम अपने सारे बच्चों को दे देंगे उस सन्यासी को, नित्यानंद कहां चल जाए, हम ले आएंगे उसको। फिर पूरे गांव वाले ढूंढने लगे, ढूंढने लगे, कभी किसी को दिखे नहीं। बाद नित्यानंद प्रभु 20 सालों तक पूरे भारत में जितने सारे तीर्थ स्थान हैं सब जगह भ्रमण किए, और बाद में वृंदावन में आकर श्रृंगार वट नाम का एक जगह है वहां निवास किए। राह देख रहे थे कब मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु शुरुआत करेंगे अपनी लीला, तब मैं वहां जाके उनसे मिलूंगा। और जब उनको पता चला कि अभी महाप्रभु कीर्तन शुरू किए हैं, तब नित्यानंद प्रभु आए। और इस तरह से और फिर जब चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई और जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दिया, तब जाके वो प्रचार किए। तब तक प्रचार नहीं किए, वो चैतन्य महाप्रभु का उनको आज्ञा मिला के प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोले घर घर में जाके ये भीख मांगो, कृष्ण का नाम ले, कृष्ण को भजे और कृष्ण का जो शिक्षा है उसको ग्रहण करे, ये उनका संदेश था। तो नित्यानंद प्रभु से मैं सोच रहा था आज के दिन क्या प्रार्थना करना चाहिए, हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। एक है नित्यानंद की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा कभी नहीं मिल सकती। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो भी ज्ञान आज हमें उपलब्ध है वो केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से है। अनंत है वो, अनंत शेष, नित्यानंद सुख के विस्तृत रूप है। अनंत शेष के मुख में भगवान का यश गान स्थित है। भगवान के यश गान की जो मणि है वो अनंत शेष के मुख में स्थित है। जैसा मूल्यवान मणि हम अच्छे जगह में छिपा कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, इस तरह से भगवान का यश करने का जो शक्ति है वो शक्ति बलराम जी से मिलती है, नित्यानंद प्रभु से मिलती है। जब तक आप देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने प्रेरणा दी सपने में आकर, जब वो नित्यानंद प्रभु के बारे में अपने भाई से झगड़ा हो गई उनकी, नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं देते थे, महाप्रभु को देते थे, तो अपने बड़े भाई से उन्होंने वाद विवाद किया। नित्यानंद प्रभु उस दिन रात को सपने में आए, उनके 90 साल के थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बोले तुरंत वृंदावन जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। और वृंदावन कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से ही चैतन्य चरितामृत आज हमें उपलब्ध है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत लिखे, उनके प्रेरणा देने वाले भी नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम महाप्रभु को जान सकते हैं। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। गुरु अपने उदाहरण से और अपने शिक्षण से सिखाता है कि किस तरह से हमें भगवान की शरण जानी चाहिए। तो ये जानना है तो केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। तो पहला प्रार्थना हम ये कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें अगर चाहिए कलयुग के बद्ध जीवों के लिए, उसके अलावा दूसरा हमें राह नहीं है, तो निताई चरण सत्य तहार सेवक नित्य धरो निताय चरण दुखानी। तो आज का दिन बहुत सुंदर दिन है श्री चैतन्य महाप्रभु से के कृपा प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु से मांगना। और जब नित्यानंद प्रभु किसी का रिकमेंडेशन भेजते हैं तो महाप्रभु उसको नकार नहीं सकते। जिस माधाई को महाप्रभु मारने वाले थे, नित्यानंद प्रभु के कहने पर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये एक रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो जन्म दिवस है उससे भी हम लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दिन, जहां हम उनसे भीख मांग सकते हैं, उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं। दूसरा जो मांगने वस्तु है जो आज मांग सकते हैं, उनसे बढ़कर सेवा भाव और किसी में हो ही नहीं सकता। ये साक्षात कृष्ण ही पर सेवक भगवान 10 अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, पांचों रस में सेवा करते हैं। वो शांत रस में भगवान के शैया, भगवान का आसन, भगवान का वाहन, भगवान का ध्वज, भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, सब कुछ नित्यानंद प्रभु हैं। उस तरह से शांत रस में सेवा करते हैं। दास्य रस में हमेशा सारे ग्वाल वालों के साथ भगवान की सेवा करते हैं, महाप्रभु की। साख्य रस में हमेशा अंतरंग जो बातचीत है, जब महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे सबसे पहले उन्होंने नित्यानंद को कहा, अंतरंग, बहुत ही अंतरंग मित्र के समान, बड़े भाई के रूप में वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु बड़े भाई हैं, वो तो कभी कभी महाप्रभु उनको पूजते थे, उनका व्यास पूजा किया। और माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन जो है अनंग मंजरी, उसके रूप में वो सेवा करते हैं। तो सचमुच में एक खास चीज जो हम आज उनसे मांग सकते हैं वो है ये सेवा भाव, जो हमारा मूल स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। नित्यानंद प्रभु भगवान के अंदरूनी इच्छा को अच्छी तरह से जानते थे। कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो बड़ा विचलित करने वाला। महाप्रभु ने सन्यास लिया और नित्यानंद प्रभु ने उस दंडा को तोड़ के फेंक दिया। सन्यास दंडा जो है पूरे जीवन भर रखते हैं, नित्यानंद प्रभु ने उसे तोड़ के फेंक दिया। बाहर से क्रोधित हुए महाप्रभु, अंदर से प्रसन्न हुए। उसका कारण आचार्य उसके लिए एक बड़ा प्रवचन दे सकता हूं मैं कि क्यों। एक बार महाप्रभु ने कहा था, तुम बंगाल मत आना, बंगाल में रहना, जगन्नाथपुरी मत आना। और नित्यानंद प्रभु आ गए और महाप्रभु प्रसन्न हुए। तीन प्रकार के सेवक होते हैं, एक फर्स्ट क्लास सेवक, दूसरा सेकंड क्लास और तीसरा शाबाश, बहुत होशियार हो आप, तीसरा थर्ड क्लास। थर्ड क्लास सेवक कौन है? मालिक बोलता है आज थोड़ा गर्मी लग रही है, थोड़ा कुछ ठंडा हो जाए। नहीं साहब, गरम गरम है, गरम पिलाऊंगा बस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाय पिलाऊंगा। पैर दबाओ, बोले पैर दबाओ, मजा नहीं आता, सर दबाऊंगा, बोला गला दबा मेरा। ये थर्ड क्लास सेवक है। मालिक चाहता कुछ और है और सेवक करता कुछ और है। दूसरे श्रेणी का सेवक कौन है? दूसरे श्रेणी का जो बोला उतना ही करना, जो बोला उतना ही करना, बस परफेक्ट, लक्ष्मण रेखा जैसा, जो बोला उतना तक, उससे पार नहीं, उससे कम नहीं। तो ये दूसरी श्रेणी का सेवक है ना, आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो बोलोगे करके रखता है वो। पहले दर्जे का सेवक, फर्स्ट क्लास, आप बाहर से आए और आपको पसीना छूट रहा, लगता है आपके मन में लगता है अभी थोड़ा ठंडा ठंडा लस्सी हो जाता तो मजा आ जाता, और पीछे से नौकर आता है, साहब लस्सी आपके लिए। अरे तेरे को कैसा पता लगा? समझ गया साहब, आपको चाहिए अभी समय। हृदय की बात जानकर कहने से पहले ही समझकर काम कर ले, वो प्रथम श्रेणी का सेवक। बोलने के बाद जितना बताया उतना करे, वो दूसरी श्रेणी का। इसीलिए हनुमान जी को प्रभु रामचंद्र ने गले लगाया। रामचंद्र ने क्यों गले लगाया? हनुमान चालीसा में आता है, वो प्रेम से गले लगाए, क्या वो श्लोक भूल गया मैं, हाँ कहा भरत, उससे पहले क्या है, कहा भरत, हृदय से लगाए और बोले कहा भरत सम तुम प्रिय भाई, सहस वदन तुम्हरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, सब गुणगान करते। क्यों? हनुमान जी को इतने बोला था, एक काम कर, सीता को ढूंढना, बस सिर्फ इंफॉर्मेशन लाना, सीता कहां है, इतने बोला था ना। तीन दिशा में लोग गए, वापस आ गए, कहां बगीतला भेटला नहीं। हनुमान जी को दक्षिण दिशा में क्यों भेजे? क्योंकि इस तरफ गया है तो शायद ये पता करके लाएगा। हनुमान जी थोड़ा एक्स्ट्रा सेवा किया उन्होंने, सीता माता को तो पता किए, पर जब उन्होंने सीता माता को बड़ी मुश्किल से ढूंढा, सबसे पहले छलांग मार के गए, समुद्र लांघा, लांघने के बाद लंका में प्रवेश किए, और वो भी चतुरता उपयोग किए, मूर्ख जैसे अंदर नहीं चले गए कि मार दिया गला काट के खत्म कर दिए, नहीं, छिप के जैसा जैसा जाना है किस तरह से जाना है छिप छिप के गए, निराश हो गए, बाद में पता लगा। सुंदरकांडा पढ़िए रामायण में, बहुत सुंदर वर्णन है, हनुमान जी का प्रवेश करना, लंका को कूदना, उसके बाद अन्वेषण, ढूंढना, ढूंढने के बाद निराश हो जाना, निराश होने के बाद फिर से कोशिश करना, बोले मैं कैसे जाके मुंह दिखाऊं, मर जाऊंगा अच्छा है पर वापस नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा पर वापस जाके मुंह कैसे दिखाऊंगा कि सीता को ढूंढ के नहीं लाया, पर मैं मर जाऊंगा तो बिना सीता का खबर पाए प्रभु रामचंद्र शरीर छोड़ देंगे, तो भरत शरीर छोड़ देंगे 14 साल में, उसके बाद तो पूरे अयोध्यावासी छोड़ देंगे। अरे अरे मरना नहीं चाहिए मेरे को, कुछ तो करना चाहिए, चलो कुछ तो करेंगे, छलांग मार से फिर से ढूंढे, जब सीता जी को ढूंढे, सीता जी अपने ही बाल को बांधकर आत्महत्या करने वाली थी, और अगर कोई भी जाता था तो डरती थी, उसको लगता था रावण बंदर बन के आया है। आप सोचो सीता की परिस्थिति, उनको आश्वासन दिलाना कि मैं सचमुच में राम का भक्त हूं। इतनी चतुरता से उन्होंने न केवल सीता को ढूंढा, पहला काम बहुत मुश्किल था, ढूंढा, ढूंढने के बाद सीता आत्महत्या करने वाली थी, उनको आश्वासन दिया, पूरा खो बैठी थी वो, निरुत्साहित हो गई थी, आत्महत्या करने वाली थी, उनको आशा दिया, एक आचार्य के काम किए, और करने के बाद पूरा काम होके वापस नहीं आए, बोले एक मिनट, रावण के बारे में पूरा पता करता हूं और रावण को एक झलक दिखा के आता हूं कि मेरे प्रभु कौन है, और अभी भी चाहे तो सुधर जा। तीन भागों में बांटा गया सुंदरकांड, एक अन्वेषण, अनानी ढूंढना, ढूंढने के बाद आश्वासन देना सीता माता को, और सीता माता को आश्वासन देने के बाद विरोधी ध्वंस, रावण को एक ऐसा लंका, पूरा आधा लंका तो जला ही दिए थे, बाकी जो बचा था सब लोग आग की किए। तो इस तरह से प्रभु रामचंद्र बहुत प्रसन्न हो गए, बोले मैं जितना अपेक्षा किया था उससे कई गुना तूने ज्यादा किया, मैं कुछ नहीं दे सकता इसके बदले में, मैं वनवासी हूं, यह कहकर उन्होंने गले लगाया। ये जो है फर्स्ट क्लास सेवक, प्रभु के हृदय को जानकर, हम फर्स्ट क्लास तो नहीं बन सकते, कम से कम सेकंड क्लास तो बनना चाहिए हमको, जो बोला उतना तो करना चाहिए, थर्ड तीसरे दर्जे का नहीं बनना है हमको। और वो जो सेवा भाव है, हम श्री नित्यानंद प्रभु से आज के दिन पूछ सकते हैं, जो हमारा स्वरूप है, प्रेम मतलब सेवा। हम किसी से प्रेम करते पर उनकी सेवा नहीं करते तो नाम का प्रेम है वो, बिना सेवा का जो प्रेम है वो दिखावट का प्रेम है। प्रेम मतलब सेवा, और सेवा मतलब प्रसन्न करना, बिना प्रसन्न किए किस प्रकार का सेवा। और ये श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो सकती है। मार खे प्रेम दे, मार खाए जगह मदाई का और फिर भी उसको प्रेम दे दिया। तो ये महत्वपूर्ण चीज आज श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम, अंत में मैं एक छोटी सी बात कहकर समाप्त कर दूंगा, बहुत सुंदर नाटक बच्चे लोग तैयार हैं, और उसके बाद मेरा नम्र निवेदन है, कृपया आज थोड़ा बाय चांस थोड़ा लेट भी हो जाए, आज का दर्शन बहुत खास दर्शन है और इसीलिए दर्शन को लास्ट में रखे, तो कृपया तुरंत नाटक के बाद यहां आ जाइए। और आज का खास दर्शन है श्री गौर निताय का, नित्याय गौरचंद्र का, और दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाइएगा। आरती बोल रहा हूं, आरती कितना देर चलेगा आपके आपके अनुसार। एक चीज मैं आपको एक छोटी सी, हाँ एक बार, ये महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के कितना महान उनका गुणगान करते हैं, ये चैतन्य भागवत में वर्णन है। भक्ति करो, हाँ प्रभु बोले सुनो हो सकल भक्तगण, नित्यानंद पादोदक करो ग्रहण। एक बार नित्यानंद प्रभु को आसन पे बैठाए और सारे भक्तों को एकत्रित किया महाप्रभु ने, और कह रहे हैं प्रभु बोले सुनो हो सकल भक्तगण, सब भक्तगण से बोले सुनो ध्यान से, नित्यानंद पादोदक करहो ग्रहण, नित्यानंद के पादोदक को जरूर ग्रहण करना। कोरिले इहार पादोदक रस पान, कृष्णे दृढ़ भक्ति होए इथे ना ही आन। बोले इसमें कोई संशय नहीं है, जो नित्यानंद के पादोदक को ग्रहण करता है चरणामृत को, करिले इहार पादोदक रस पान, जो भी पान करता है, कृष्णे दृढ़ भक्ति होए इथे ना ही आन, इससे सरल तरीका और श्रेष्ठ तरीका नहीं है। नित्यानंद के पादोदक का जरूर रसपान करना। आज्ञा पाई सबे नित्यानंदेर चरण, पाखालिया पादोदक करो ये ग्रहण। प्रेम से बैठाए उनको और उनके चरण धोने लगे सब भक्तगण। पांच बार दशो बार एक जने खाए, बाह्य नाही नित्यानंद हसए सदाए। नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, आराम से पैर फैलाए बैठे हुए थे। कोई पांच पांच बार पीता था, कोई दस दस बार पीने लगे। पादोदक पीते चरणामृत धोते थे, पीते थे। आपने बसिया महाप्रभु गौर राय, नित्यानंद पादोदक कौतुके लुटाए। देख रहे थे भक्तगण सब पी रहे हैं, महाप्रभु खुद भी लेने लगे। सबे नित्यानंद पादोदक करी पान, मत्त प्राय हरि बोली करो ये आह्वान। जब उन्होंने पादोदक ग्रहण किया, मत्त प्राय पागल जैसे हो गए वो, क्योंकि नित्यानंद भी पागल है। देखिए जीवन का उद्देश्य है पागल होना। आप बोले क्या महाराज क्या बोल रहे हो, या माया के पीछे पागल होना या कृष्ण के पीछे पागल होना, बीच का कोई रास्ता नहीं है। न्यूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, पूरी दुनिया पागल है, उन्हें मालूम नहीं हम कौन है, अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। पागल आदमी को नहीं मालूम वो कौन है, कोई पूछो कौन है, कहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, समझ गया तू कौन है। पागल खाने में किसी से पूछो तू कौन है, मैं डॉक्टर हूं, तू इधर क्यों है, क्या है, सब पेशेंट लोगों से मिलने आया हूं। पागल मतलब वो जो अपने आप को कुछ और समझता है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर समझ रहे हैं, अहंकार है, मत हो गया, मत हो गए अहंकार में, तो सबसे बड़ा पागलपन। तो ये पागलपन एक है, पर नित्यानंद प्रभु के पादोदक का पान करोगे तो दूसरा पागलपन आ जाएगा। वो पागलपन क्या है, कृष्ण प्रेम का पागलपन। तो फिर हाँ, केहो बोले आजी होइला, आजी धन्य होइला जीवन, केहो बोले आजी सबो खंडिला बंधन। जो जो पान किए उनका अनुभव क्या है बता रहे हैं। केहो बोले आजी धन्य होइला जीवन, कोई बोल रहा है आज मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि मैंने नित्यानंद पादोदक पान किया। केहो बोले आजी सबो खंडिला बंधन, मेरा सारा बंधन दूर हो गया। केहो बोले आजी होइलाम कृष्ण दास, किसी का चरणामृत पीना मतलब अपने आप को नम्र मानना है कि नहीं। किसी का खाया भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। भक्त के चरणों का धूली, भक्त के चरणों का धुला हुआ जल और भक्त का खाया हुआ बचा हुआ खाना, ये तीन बहुत शक्तिशाली हैं कृष्ण प्रेम बढ़ाने में। पर किसी का जूठा खाना मतलब नौकर खाते केवल, बस नौकर लोग जूठा खाते हैं। हम अपने आप को प्रभु समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा पागलपन है। पर जिस दिन हमने चरणों भगवान के चरण कमल से धुला हुआ जो चरणामृत किया, उस समय जो समझ में आ जाता है हम कौन है। केहो बोली आजी होई लाम कृष्ण दास, केहो बोले आजी धन्य दिवस प्रकाश, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। केहो बोले पादोदक बड़ा स्वादु लागे, कोई बोला अरे वाह बहुत स्वाद है, आज तक ऐसा स्वादिष्ट चीज मैंने नहीं किया, पान नहीं किया। एको ने वो मुखे रो मिष्टता नहीं भागे, 20 दिन के बाद भी अभी बोल रहे अभी तक वो मिठास नहीं गया, अभी भी है वो। अगला नित्यानंद ऋषि कब है ताकि हमें फिर भी चाहिए। किसे नित्यानंद पादो दकेरो प्रभाव, पान मात्र सभे हिला चंचल स्वभाव। और जैसे पान किए नित्यानंद प्रभु वैसे वो भी चंचल हो गए और कीर्तन में पागल जैसे नाचने लगे। ये क्यों बता रहा हूं, ये एडवर्टाइजमेंट है आपके लिए। अभी इतना बड़ा जो अभिषेक हो गया तो कृपया जरूर नित्यानंद के अभिषेक किया हुआ जो चरणामृत है, भले एक बूंद है, थोड़ा ले जाओ, हो सके तो घर में भी ले जाओ, सबको पिलाना, बहुत अच्छी बात है, कृष्णदास बनेंगे सब लोग। पहले आप पी लेना, बोलना मत। मैं विमान में जाता हूं तो वहां बोलते हैं इमरजेंसी में ये मुख में क्या बोलते हैं, मास्क लगाना, और हमेशा बोलते हैं माताएं पहले अपना लगाना बाद में बच्चे को पिलाना, बच्चे को लगाना, वो स्वार्थ नहीं है, वो परमार्थ है, दोनों एक साथ हो जाता है। तो थोड़ा करना और थोड़ा बांटना भी चलेगा, पहले सबको होने दिए बाद में बच्चा तो ले जाना घर, तो जरूर ले जाइए। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर मौका है, सुनहरा मौका है आज के दिन गौर निताय के कृपा प्राप्त करने का। तो कृपया जरूर दो चीज, आप ड्रामा के बाद दर्शन के लिए आइए और दर्शन करने के बाद प्रसाद के साथ साथ चरणामृत मत भूलिए। इंतजाम किया गया सबके लिए चरणामृत है, और प्रेम से लीजिएगा, ये स्मरण करते हुए लीजिएगा। श्रद्धा मात्र शुद्ध नाम ही हटते विकार, श्रद्धा जरूरत है, श्रद्धा पूर्वक अगर आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित कृष्ण प्रेम आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।